ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಪರಿಭವಘ್ನಮಭೀಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವವಿರಿಂಚಿದೂನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಂ ಪ್ರಣತಪಾಲಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕೋ ಯಾದ ಕರೆ, ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕೋ ಯಾದ ಕರೆ. ಕಿನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೆ ಆಂಖ್ ಖುಲ್ ಜಾಯೆ, ಜೈಸಿ ಜೈಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಕರ್ಣವಾಸ್ ದೋಪಹರ್ ಮೇ ಪ್ರವಚನ ಹುವಾ, ಜೇಠ ಸುದಿ ದೂಜ್ ಸಂವತ್ 1995, ದಿನಾಂಕ 31-5-38. ಸತ್ತರ ವರ್ಷ ಹೋ ಗಏ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಪುರುಷ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಬಡಿ ಭಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹರದಮ್ ಜಾಗೃತಿ ಹೀ ರಹತಿ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ನಿ ಜೀವನಿ ಕಾ ಅಪ್ನೆ ಜೀತೆ ಹುವೆ ಪ್ರಚಾರ ಕರೆ, ಅಥವಾ ಮರಣೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಪ್ರಚಾರ ಕರವಾವೆ, ತೋ ಸಮಝನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಹೈ. ಔರ್ ಜೋ ಅಪ್ನಿ ಜೀವನಿ ಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ನಹಿ ಚಾಹತೆ, ಉನ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಪ್ರಕಾಶ ಹೀ ಪ್ರಕಾಶ ಹೈ. ಜಿಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಅಂಧಕಾರ ನಹಿ ಹೈ, ವಹ ತೋ ನ ಅಪ್ನಾ ನಾಮ ನ ಅಪ್ನಾ ಪ್ರಚಾರ ಕುಚ ನಹಿ ಚಾಹತ. ಔರ್ ಜೋ ಬಹುತ್ ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿ ಕೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ವಹ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪ್ನಿ ನ ಜೀವನಿ ಔರ್ ನ ಔರ್ ಕುಚ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ಯದಿ ವೋ ಮರ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಅನುಯಾಯಿ ಯದಿ ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಕಿ ಯೇ ಉಚ್ಚ ಶ್ರೇಣಿ ಕೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಥೆ, ಯೇ ಉನ್ಕಿ ಜೀವನಿ ಹೈ, ತೋ ವೇ ಉಸ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಹೈ ನಹಿ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಹೈ. ಉನ್ಹೊನೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕೋ ಸಮಝಾ ಹಿ ನಹಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಚರಿತ್ರ ಕೆ ರಹತೆ ಕ್ಯಾ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಔರ್ ಚರಿತ್ರ ಕಿ? ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ರಾಮ್ ಜೀ ಸೆ ಭೀ ಊಂಚೆ ಚರಿತ್ರ ವಾಲೆ ಹೋ? ಜೀತೆ ಹುವೆ ಮನುಷ್ಯ ಯದಿ ಅಪ್ನಿ ಫೋಟೋ ಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಕರೆ, ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಅಂಧಕಾರ ಹೈ. ಅರೆ ಉಸ್ ಫೋಟೋ ಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಕರೋ ಜಿಸ್ಸೆ ಉದ್ಧಾರ ಹೋ ಜಾಯ್. ವೋ ಫೋಟೋ ಕೇವಲ ಪ್ರಭು ಕಿ ಹೀ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಭು ಕೆ ಚಿತ್ರೋ ಪ್ರಭು ಕೆ ಚಿತ್ರೋ ಕಾ ಖೂಬ್ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿ. ಪ್ರಭು ಕೆ ಫೋಟೋ ಕೆ ರಹತೆ ಹುವೆ ಅಪ್ನಿ ಫೋಟೋ ಪೂಜವಾವೆ ಶರ್ಮ ಹೀ ನಹೀ ಆತಿ. ಕಿತನಾ ಅಭಿಮಾನ ಭರಾ ಪಡಾ ಹೈ, ಕಿತನಾ ಉಸ್ ಕಾ ಅಪ್ನೆ ಶರೀರ ಮೇ ಅಹಂ ಭಾವ ಔರ್ ಮಮ ಭಾವ ಹೈ. ಯೇ ಅಹಂತಾ ಔರ್ ಮಮತಾ ಹೀ ತೋ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ. ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ತೋ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಾ ಚಿತ್ರ ಹೀ ತೇರಾ ಹೈ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ಭೀ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಜೋ ಚಿತ್ರ ಹೈ ವಹೀ ತೇರಾ ಹೈ, ವಹೀ ಹೈ. ಕಿಸಿ ಭೀ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ಚಲೋ, अपनी फोटो के प्रचार करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है आपकी फोटो के प्रचार की? जो बात दुनिया के हित में हो और दुनिया के हित के उद्देश्य से बात कही जाए, उस बात का प्रचार करो ना। क्योंकि वो तो कहता है कि मेरा तो कोई वचन है नहीं, शास्त्रों का है। भक्त है तो कहता है कि भी मेरा तो वचन है नहीं, भगवान का वचन है, गीता का वचन है, भागवत का वचन है, रामायण का वचन है। जो ज्ञानी है उसको भी भगवान का ही वचन बताना चाहिए। कितना भ्रम फैलेगा लोगों में, नहीं तो लोगों को ये वहम हो जाएगा कि दुनिया जिस ढंग से बात को ग्रहण करे उसी ढंग से दुनिया को समझावे। इसलिए हम अपना प्रचार करके दुनिया को ज्ञान की बात समझाते हैं। ऐसा जो मानता है वो ज्ञानी है ही नहीं, वो महाअज्ञानी है। अपनी जीवनी, अपना रूप, अपने नाम का प्रचार ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने बड़े भगवान के अवतार हुए, इतना उनका चरित्र यहां भरा पड़ा है शास्त्रों में, इतना दिव्य भगवान का रूप है और जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, उनसे बढ़कर आप हो गए? लाख उपाय कर लो, उनसे बढ़िया तो आप हो नहीं सकते। भगवान से बढ़िया कौन होगा? आज जैसे मैं अपनी फोटो का प्रचार करूं तो दूसरा कहे कि आप आज क्यों अपने चित्रों का प्रचार करते हो? वास्तव में तो ये मान बढ़ाई चाहता हूं, ऊपर से ढोंग से बोल देता हूं कि मैं तो दुनिया का हित करता हूं। फोटो में क्या होता है, भगवान की तरफ लोगों को लगाने के लिए करता हूं। तो मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा? ये मूर्खों का विचार है। ये ज्ञानी कभी नहीं सोचता। वो सोचता है कि ईश्वर की पूजा से दुनिया का हित होता है। वो सोचता है कि ईश्वर के नाम से दुनिया का भजन, दुनिया का उद्धार होता है। ये जो गीता जी है वो भगवान के वचनों की तो है। ऐसे मैं कह सकूं, इसका खूब प्रचार करो। हम कहते हैं खूब प्रचार करो, खूब पढ़ो, क्योंकि इसमें भगवान के वचन है। हमारे घर के थोड़ा ही है, शास्त्रों का जितना प्रचार हो उतना ही ठीक है। यह कह दें कि इन बातों के प्रचार के साथ साथ मेरा भी नाम लिख दो तो समझ लो कि ये अंधकार है। किसी भी नीति में चलो, केवल मात्र भगवत विषय की बातों के प्रचार की आवश्यकता है। आप इसमें दूसरी चीज मत मिलाओ। यदि आपके अंदर कोई अच्छी चीज है तो क्या वो प्रकट करने के लिए है? वो छिपाओ। आजकल हमारे में कोई बुराई होती है तो बुराई को छिपाते हैं। अरे बुराई को प्रकट करो, अंदर से गंदगी निकालो, अच्छी बात को छिपाओ अपने अंदर। अपनी खुद की यदि दिखे तो जीवनियों में क्या होता है, बुराई तो छिपाते हैं, अच्छाई को खुलेआम बताते हैं। यदि छपाने के बिना आपसे रहा न जाए और उसकी आवश्यकता ही हो गई तो बुरी बातें छपाओ। क्या आपके जीवन में कभी आपने कोई बुरा नहीं किया है? यदि कोई बुरा नहीं किया है तो आप मनुष्य नहीं भगवान हो। लेकिन मनुष्य हैं, बुरा तो किया होगा, बुराई से निकल करके आप महात्मा बने हो। तो फिर अच्छाई को प्रकट करो और बुराई को छिपाओ। ये तो अंधकार है, ये कलंक है, काला मुंह करके और कोने में बैठ जाना चाहिए। खूब डिग्री पदवियां दी, हमने ये डिग्री ले ली, हमने ये पदवी ले ली, अरे के अंधकार बटोरा। यदि आप अपने ब्रह्म में स्वरूप में स्थित है या भक्ति के अंदर भेद को स्वीकार किया, ज्ञान के अंदर परमात्मा और आत्मा का अभेद संबंध माना, तो अब आपको डिग्रियों की जरूरत क्या है? कितनी ऊंची चीज प्राप्त कर ली, अब क्या नाम का प्रचार करोगे, क्या डिग्रियों से मिलेगा? इस प्रकार जो उसकी बड़ाई करता है वो खुद भी खड्डे में गिरता है और जिनका वो प्रचार करना चाहता है उसको भी खड्डे में डालता है। इसलिए मान बड़ाई को नहीं चाहना चाहिए। हम गुरु का प्रचार करते हैं। गुरु ने कब कहा कि मेरा प्रचार करो? गुरु ने तो जो अच्छी बातें बताई हैं बातों का प्रचार करो। और यदि कोई गुरु कहता है कि नहीं मेरे चित्रों का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो, तो दूर से हाथ जोड़ दो, ऐसे गुरु से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। उस गुरु के हृदय में अंधकार है। जो श्रेष्ठ महापुरुष है वो तो यही चाहते हैं कि ईश्वर के नाम रूप का प्रचार हो, और अपने अनुयायियों को भी यही कहेगा कि ईश्वर के नाम रूप गुण का प्रचार करो। हमारा गुरु जिसका प्रचार कराना अच्छा समझता हो, जैसे राम का प्रचार कराना चाहता है, तो बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा मानो। आजकल गुरुओं के फोटुओं का, मतों का व्यर्थ में ही प्रचार करने से कितने मत मतांतर फैल गए, पाखंड फैल गया, कितने लोग भ्रम के अंदर उलझ रहे हैं। मेरे पर यदि कोई धूल डाले और मैं उस पर क्रोध करूं तो दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा, और यदि कोई मेरे पर फूल गेरे, माला पहनावे और मैं उस पर क्रोध करूं तो वो क्रोध बुरा नहीं लगेगा। कहां से खोदी बातें? फिर सुनो, मेरे पर यदि कोई धूल गेरे, मेरे पर कोई धूल गेरे तो उसका क्रोध यदि मुझे आए तो उसका असर दुनिया में बहुत बुरा पड़ेगा। और यदि कोई फूल गेरे, माला पहनावे और मैं क्रोध करूं, क्रोध तो एक ही है पर वो बुरा नहीं लगेगा, न तो मेरे लिए बुरा है न दूसरे के लिए बुरा है। यह क्रोध परिणाम में बुरा नहीं है, क्रोध तो है क्योंकि ऐसा क्रोध हमारे अंदर दोषों को घुसने नहीं देता है और उस क्रोध से धूल गेल डालने पर हम क्रोध करें उसका क्रोध असर करता है, हमारे पर भी दूसरों पर भी बुरा असर होता है। ये इस क्रोध की बड़ी कीमत है, बड़ा आदर है, क्योंकि फिर दूसरे आदमी फूल नहीं गिराएंगे। क्या फायदा फूल गंदे शरीर में, क्या फायदा फूल गिराने से। बताया ना, धूली गेरे तो क्रोध आएंगे तो बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं एकांत में बैठा हूं और उस समय कोई स्त्री बात करने के लिए आवे, उस समय मैं यदि क्रोध करूं, फटकार दूं, तो कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि क्रोध का कारण समझो, क्रोध की जगह देखो, क्रोध भी न्यायपूर्वक है कि नहीं इसका विचार करो। ये सब बातें मैं बोल रहा हूं, ये बहुत महत्व की बातें हैं। किसी आदमी ने मेरे लिए कोई चीज भेजी और मैंने नहीं ली, थोड़ी देर उसको दुख होगा कि जयदयाल को मैंने चीज दी और उसने ली नहीं, दुख होगा, पर अंत में परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि वो अंत में सोचेगा कि जयदयाल ने ठीक मना किया है। आप दुनिया में यदि अपने सत्यता को, धर्म को रक्षित करना चाहते हो तो कहीं कहीं आपको कड़ाई का नियम करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा है, ऐसी कड़ाई अच्छी है, और जितनी आप ढिलाई दोगे उतना आप दुख पाओगे, बड़ी दुखदायक होगी, जनता पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छे पुरुष तो सेवा ग्रहण करते नहीं, फिर दुनिया में महापुरुषों की सेवा कैसे होगी। इसलिए महापुरुष की कही हुई बात के ऊपर कठोरता से पालन करो, अनुसरण करो, ये महापुरुषों की कम सेवा नहीं है, उनकी वाणी की सेवा करो, उनकी कही हुई बात का आदर करो। अच्छे पुरुषों की यदि सेवा करना चाहे तो वह उसका धन छीनना है, कि नहीं मैं तो शरीर की सेवा करूंगा, यह धन छीनना है। वास्तव में तो उसकी सेवा अज्ञान, उसकी सेवा आज्ञा का पालन है। अच्छा पुरुष बिल्कुल सेवा करानी नहीं चाहता और दूसरा जबरदस्ती करने की इच्छा रखता है, तो उसकी ये इच्छा से जो लाभ होगा उतना सेवा से नहीं होगा, क्योंकि बार बार सेवा करने से अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार जो सेवा का मौका देखे किंतु मिले नहीं तो वह इच्छा बड़ी लाभदायक है, क्योंकि उसे अश्रद्धा नहीं होगी। माने अब आई इस ध्यान में, महापुरुष है दूसरों की सेवा लेना नहीं चाहता और दूसरा उसकी सेवा करने की इच्छा रखता है, तो उसकी इस इच्छा से जो लाभ होगा वो सेवा से नहीं होगा। ओके, मैं सेवा करूंगा, लेकिन वो अवसर ही न दे, उसके अंदर सेवा करने की भावना है तो सेवा करने से जो लाभ होना चाहिए उससे ज्यादा लाभ होगा जो उसकी इच्छा बनी है। इससे यदि सेवा करेगा तो अश्रद्धा होगी, सेवा लेगा अश्रद्धा होगी, नहीं लेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये इच्छा लाभदायक है। पशु पक्षियों की सेवा करो ना, क्रियात्मक सेवा करनी है, वहां विचारों के वचन पालन की कोई जरूरत ही नहीं। महात्मा की क्यों करते हो? क्योंकि वहां मन में कोई न कोई स्वार्थ है। महात्मा की सेवा करेंगे कल्याण होगा, सेवा करेंगे या आशीर्वाद देंगे हमारा कोई काम बन जाएगा, और कोई कारण नहीं। कोई भिक्षुक है उसको कोई देना चाहे, हर एक बात में वो ना जी ना करता है, तो सुनने वाले के मन में श्रद्धा होती है कि अरे हम तो देना चाहते लेते नहीं। और वो भिक्षुक दूसरे दिन कह दे लाओ जी क्या क्या जितना दे दे दो, लिए लो रुपया लो रहा कर दे, देखो ये कपड़ा भी लाओ कपड़ा, ये थाली ले लगे लाओ, ये भी लाओ ये भी लाओ, मना ही नहीं करे मानता ही चला जाए तो फिर उसमें श्रद्धा टूट जाएगी। भाव ऊंचा है क्रिया ऊंची नहीं है। जो अच्छा पुरुष जितनी अधिक सेवा करावेगा तो समझदार पुरुषों की उतनी ही श्रद्धा कम होती चली जाएगी। एक भाई परमात्मा का सकाम ध्यान कर रहा है और एक भाई तुलाधार वेश्या की तरह दुकान पर बैठा व्यापार कर रहा है और वो निष्काम भाव से व्यापार कर रहा है। ग्राहक को भगवान का स्वरूप समझकर व्यापार कर रहा है तो मैं उस व्यापारी भाई को अच्छा मानता हूं। आप कहोगे कि कैसे, वो तो परमात्मा का ध्यान करता है, ये तो व्यापार करता है। अरे ध्यान करने में भाव क्या है? भाव तो कुछ न कुछ कामना है, लौकिक कामना है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। और उसका भाव है ये भगवान आए ग्राहक बनकर, ये छोटा रूप बना के आए, छोटा बालक आए, ये आए ये माता आई, भगवान भगवती का रूप बनाकर ऐसे विचार रखता है, बहुत अच्छा है। जाजली नाम के ऋषि का बहुत भयंकर ध्यान और इधर तुलाधार का रसकट का व्यापार, रसकट का व्यापार नहीं करना चाहिए, तेल है घी है ये व्यापार अच्छे नहीं होते। किंतु तुलाधार में सिकरता था, घी तेल वगैरह सब देता था। जाजली का ध्यान किसी काम का नहीं रहा और तुलाधार वेश्य का काम कितना ऊंचा रहा। क्यों? जाजली को घमंड हो गया, कौन मेरे समान तपस्या कर सकता है। जाजली ने कपड़ा बिना आधार के सुखा दिया, आओ मेरी तपस्या का कैसा प्रभाव। आकाशवाणी हुई, ए जाजली तेरे से तुलाधार वैश्य बहुत आगे है, जाकर के देखा ये काय का तुलाधार, ये तो रसकट का काम करता है, ये मेरे से अच्छा कैसे। परंतु ज्यों ज्यों तुलाधार का भाव देखता गया उसका घमंड चूर्ण हो गया। सकाम ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। स्वार्थ को लेकर यदि काम करते हो तो गड़बड़ है, इसलिए भाव की प्रधानता है। वैराग्य को तो वे लोग ही कह सकते हैं जिनके भीतर और बाहर वैराग्य और त्याग है, भीतर भी और बाहर भी, वही वैराग्य की बात कह सकते हैं। उनके मुख से वैराग्य की बात बहुत अच्छी लगती है। जिसकी कृपा से गूंगा बोल देता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, वैराग्य की बात उनके लिए कितनी अच्छी लगती है। यथार्थ में तो अपने को बोलना आता ही नहीं। दो बात है संसार से वैराग्य और प्रेम। जैसे रस्सी होती है, रस्सी को बांटते हैं मन में, एक को इधर एक को इधर एक को इधर, बहुत रस्सी मजबूत होती है। ऐसे ही संसार से वैराग्य, परमात्मा से प्रेम, संसार से वैराग्य, परमात्मा से प्रेम, संसार से वैराग्य, वो साधन बहुत मजबूत होता है। प्रेम तो अनिर्वचनीय है। प्रेम होता है उस समय अपने आप को मनुष्य संभाल ही नहीं सकता। भगवान के प्रेम की चर्चा करनी बड़ी उत्तम है। जिनकी भगवान में प्रीति हो गई, भगवान में प्रेम हो गया, उनकी महिमा कौन जाने, कैसे कोई गा सकता है। जैसे भगवान की महिमा कोई नहीं गा सकता, ऐसे प्रेम की महिमा को भी कोई नहीं कह सकता। जिसके मूल्य में भगवान और महापुरुष दोनों बिक जाते हैं, उस प्रेम के मूल्य में। महात्मा लोग रुपयों से खुश नहीं होते, किंतु प्रेम से वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रेम का उपार्जन करना चाहे, उस प्रेम का उपार्जन करना चाहे, हम लोगों का जो स्वार्थ रहित प्रेम है वह भी प्रभु का ही है। जैसे गोपियां परस्पर में प्रेम क्रिया करती थी, ग्वाल बाल भी परस्पर में प्रेम किया करते थे, वे केवल आपस में प्रेम की बात किया करते थे। इसलिए हमको भी परस्पर में भगवत प्रेम की बातें करनी चाहिए। प्रेममयी भक्ति से भगवान आ जाते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया। भगवान न वेद से न यज्ञ से न तप से दर्शन देते, किंतु एक अनन्य भक्ति से वश में होते हैं। अनन्य प्रेम का यही अर्थ है कि प्रभु को छोड़कर कोई बात ही न हो। गौण मुख्य और अनन्य प्रेमी क्या है, इतनी बड़ी बात पूछते तो हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में गौण प्रेम भी नहीं है। गौण प्रेम माने मुख्यता से तो इसमें प्रेम है, भैया ऐसी पेंसिल मिल जाए हाईलाइट करने के लिए, पेंसिल मिल जाए और भगवान का नाम स्मरण भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, मुख्य है संसार मिलना चाहिए। गौण प्रेम भी नहीं है। एक भाई ध्यान करने बैठता है, किंतु उसका मन चारों ओर घूम रहा है और उन बातों में सुख मानता है। वह तो गौण प्रेम भी नहीं है, बहुत मामूली सा किंचन मात्र प्रेम है। इतने से वो बहुत बड़ा अपने को मानने लगता है। थोड़ी सी तो प्रेम की बात करते हो, उसमें भी घमंड करके उसको खत्म कर देते हो। कभी कभी कोई भगवान में मन जाता है। इस प्रकार संसार के मनुष्यों का विषयों की ओर ज्यादा प्रेम है और भगवान की तरफ ना कुछ प्रेम है। जिसका विषयों में गौण प्रेम है और भगवान की ओर मुख्य है, तब तो फिर उसके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। और जिसका केवल भगवान की ओर प्रेम है, संसार का काम हो न हो कोई मतलब नहीं, उसको तो अपने आप का भी पता नहीं। जैसे गोपियां कहती थी, दही ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, यह प्रेम है। दही ले लो में उनकी वृत्ति भगवान की तरह, वो जान जान करके दही में जाना, जान जान करके दही का नाम लेना चाहती, पर आता नहीं, अपने को ही भूल गई। सारे ब्रज में आश्चर्य होने लगा कि कृष्ण ले लो, कहां है तुम्हारे हाथ में कृष्ण, कहां है? और दही, मैंने क्या बोल दिया, मैं तो दही लो बोलती थी। नहीं नहीं, तुमने कहा गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, कहां है माधव? ओहो, मैं दही बोल रही थी, छाछ बोल रही थी। नहीं नहीं, तू कह रहे माधव ले लो, होश ही नहीं। ये प्रेम है। ऐसे प्रेम तो अब केवल कहने की बातें रह गई। सुतीक्ष्ण जी को भी रास्ते का पता नहीं चला, कौन हूं कहां हूं कुछ मालूम नहीं। अनन्य प्रेम। हम लोगों को प्रेमी होने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के दर्शनों के लिए तो लोग बोल देते हैं दर्शन कराओ, लेकिन भगवान के प्रेमी का दर्शन सबसे बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी तो कैसे भगवान के भक्त, कभी नहीं कहा मुझे दर्शन दे। उनको आग में फेंका गया, ये भी प्रभु है। समुद्र में फेंका गया, ये जल भी प्रभु है। सांपों से, नागों से, हाथियों से घेरा गया, ये भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, ये भी प्रभु है। तो प्रहलाद के शरीर को न आग ने जलाया, न शस्त्र ने काटा, न नाग सर्प कुछ उसके विष चढ़ा सके, न हाथी उनको कुचल सका, न सूंड में ले सका, कोई कुछ नहीं कर सका। वैराग्यवान के दर्शन से मनुष्य के हृदय में वैराग्य हो जाता है। मंगलनाथ जी महाराज के दर्शन ने मेरे पर बड़ा अधिकार जमा लिया। उनकी वैराग्य और उपरामता की मुद्रा को देखकर मैं चकित हो गया। जहां गए वहां कुछ भी नहीं है, जहां संसार की कोई बातें चलती, शिव 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 ऐसा करके चले जाते हैं। उनका व्यवहार शिक्षाप्रद था। ऐसे महात्माओं जैसे यदि हम लोग नहीं बने तो फिर यहां आके क्या किया? किसी और की जगह, किसी और को ये जगह मिलती तो बेचारा कल्याण करता। उनको देख देख कर मेरे मन में आती थी कि ऐसा मैं भी बनूं। कभी कभी घर छोड़कर वन में जाने की, अकेले रहने की बड़ी प्रबल इच्छा होती थी, परंतु ये सोचता था कि मैं बच्चा हूं, 15-16 वर्ष का हूं, पीछे मां दुख पाएगी और पिताजी के मन में विचार आएगा, भाई लोग ढूंढेंगे घूमेंगे, तो चुप हो गया। इस प्रकार भाव मेरे उत्पन्न होते थे उनको देखकर। जब मैं इस प्रकार के भावों में डूब जाता, पिताजी गौर से मुझे देखा करते थे। पिताजी ने सोचा कि ये जयदयाल अपनी स्त्री के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा विवाह हो गया, पिताजी ने जल्दी विवाह कर दिया कि कहीं ये उपराम होकर घर न छोड़ दे। देखो महापुरुष लिखते हैं, बोल रहा हूं, कितने कितने साफ बोलते हैं। पिताजी ने सोचा ये अपनी स्त्री के पास जाता है कि नहीं। तब मेरे हनुमान प्रसाद गोयन का जो मित्र थे, मेरे से तो नहीं बोल रहे ऐसी बात, उसको बुलाया है। और पिताजी ने कहा कि हनुमान, इस जयदेव को किसी न किसी प्रकार से भोगों में प्रवृत्त कराओ। तो भाई हनुमान ने मेरे पिताजी से कहा कि आप इत्र का डब्बा मंगाओ। पिताजी ने कहा क्यों, यदि ये इत्र को खूब पसंद करेगा तो आप समझ लेना इसकी विषयों में इच्छा है, स्त्रियों की तरफ मन जावे तो समझना चाहिए कि यह तो विष्ठा मूत्र का ठीकरा है, क्यों अपना नाश करो, क्यों बुद्धि का नाश करो, क्यों हृदय में भगवान की भक्ति का नाश करो, क्यों आयु का नाश करो, ऐसे अपने मन को खूब भय दिखाना चाहिए। और फिर भी यदि स्त्री अच्छी लगे तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो, मैं घोर नरक में नहीं चला जाऊं, प्रभु मैं आपके चरणों को पकड़ करके इसी में रहना चाहता हूं, हे प्रभु मुझे बचाओ, या आपके अलावा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये नहीं कहा मैंने ऐसे प्रार्थना की है। इसके बाद मैं बांकुड़े में आ गया, फिर मेरी वृत्तियां उतर गई, ये वैराग्य उपराम की वृत्तियां उतर गई, यहां आकर के फिर हठयोग देखा तो फिर योग करने की इच्छा हुई हठयोग की। अंत में फिर वही दशा हो गई। आज मेरी दशा है कि मुझे इत्र में पेशाब दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस समय भी वैसा ही वैराग्य था। वैराग्य क्या चीज है इस बात को ख्याल करो। वह वैराग्य की मूर्ति जो मैंने देखी थी, उसको जब मैं कभी अकेले में याद करता हूं तो वैराग्य की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। ऐसी इच्छा होती है कि अकेला जंगल में एकदम चला जाऊं, किसी से बात न करूं। फिर मैंने देखा ये बाहर की नकल दुनिया करेगी, अच्छा नहीं है। मैं कर्मयोग का प्रचार करता हूं, दुनिया देखेगी कि जयदयाल भी कर्मयोग का प्रचार करता था, पर उसने भी गृहस्थ वगैरह सब छोड़ा है, वो स्वरूप को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देगी। तो इस प्रबल वैराग्य को सुरक्षित कैसे रखूं, तो मुझे योग शास्त्र में एक सूत्र मिला, वीतराग विषयम वा चित्तम। हरदम वैराग्यवान पुरुष का चिंतन करो। मैंने देखा ये अंदर की साधना है। जिसका चित्त ऐसा हो जाए फिर उसका कल्याण हो जाता है। जिस समय वैराग्य नहीं हो तो कोई भी युक्ति काम नहीं आती। ये जितने जो हमको रमणीय पदार्थ दिखते हैं वैराग्य अवस्था में बड़े भद्दे लगते हैं। कितनी भी खूबसूरत स्त्री हो उसकी चमड़ी का रंग नहीं दिखता है, उसके अंदर टट्टी पेशाब दिखता है। स्त्री से यदि अलग रहना चाहो तो सबसे पहले अपने शरीर की टट्टी पेशाब की बात ध्यान में आनी चाहिए। वैराग्यवान अवस्था, वैराग्यवान की अवस्था में मनुष्य बहुत अद्भुत अपने अंदर ही कल्याण की युक्तियों को पैदा कर लेता है। एक वैराग्य के सिवाय कोई इच्छा न हो विषयों का, और विषयों में आसक्त पुरुष का संग जब करता है तो मनुष्य वैराग्य से नष्ट हो जाता है। जिस समय अच्छे पुरुषों का संग करता है, सात्विक चीजों का सेवन करता है, फिर वैराग्य होता है। वैराग्य अवस्था में भगवान का ध्यान बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब वास्तव में वैराग्य का एक प्रकार का नशा चढ़ता है, उस समय त्रिलोकी का ऐश्वर्य उसे धूल के समान लगता है। ब्रह्म लोक तक के सुख काक विष्ठा के समान लगते हैं। काक माने कौवा, कौवा की विष्ठा, शूकर विष्ठा। कौवा विष्ठा में चूस देता है फिर उसकी विष्ठा बनता है, विष्ठा की विष्ठा। सुअर भी विष्ठा की विष्ठा, उससे ग्लानी होती है, ऐसी ग्लानी उसको भोगों से होती है, ब्रह्म लोक के भोगों। मेरा तो सबसे यही निवेदन है, सब साधनों की जड़ वैराग्य है, और सब प्रकार के पतन करने का साधन भोग है। आप वैराग्य में जाओ तो बड़े ऊंचे बन जाओगे, भोगों में जाओगे महान नीचे लोक में चले जाओगे। वैराग्य के बिना ये रास्ता बंद है। मैं बटनों ही बंद कर देवा, कठिनों गेट बंद कर दे, अब तो कठिन आओ। बैरागी के बिना कल्याण के सब रास्ते बंद है। वैराग्य में से होकर ही आप स्थिर बुद्धि वाले बनोगे, ज्ञानी बनोगे, भक्त बनोगे, राग द्वेष से रहित बनोगे। मन जिसके वश में है वह वश में की हुई इंद्रियों द्वारा इतना प्रसन्नता को अनुभव करता है कि वह सारे दुखों को भूल जाता है, परमात्मा में शीघ्र ही ध्यान लगता है। भोगों को भोगने से इंद्रियों की ताजगी, इंद्रियों का ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से जो भक्त मुझे पत्र पुष्प जल फल चढ़ाता है मैं उसको खाता हूं। नहीं तो रोज लोग भगवान के भोग लगाते हैं किंतु खाते नहीं है, क्योंकि वो एक सिस्टम पालते हैं, करना है सब। लाखों रुपए के बंगले बनाते हैं, नाम होता है उषा बहा जी, इतना बड़ा बंगला, बंगला माने ठाकुर जी का बंगला, कई कई मंदिरों में बनता है, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इतना बनता है, बड़ा नाम करते हैं। प्रेम की कमी है। जब प्रेम से भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो फिर प्रेम को क्यों छोड़ूं? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम जिनको प्राप्त हो जाए तो फिर मुक्ति तो उसके चरणों में लुढ़कती रहती है। जैसे भगवान को याद करने के साथ ही काम क्रोध आदि भाग जाते हैं, इसी प्रकार वैराग्यवान महापुरुषों का स्मरण करने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये विघ्न भगवान दूर करते हैं। जिस समय वैराग्य आकर के लहराता है उस समय वो वैराग्य आनंद को साथ में लेकर आता है, किंतु विश्वास करना चाहिए। भोगों के गुलाम व्यक्ति को ऐसा लगता है भोगने से सुख होगा, नहीं, वैराग्य से आनंद मिलेगा। जिस समय वैराग्यवान पुरुष चलता है तो ऐसा लगता है मानो वैराग्य की कोई बाढ़ आ रही है, वैराग्य में कमी नहीं आने देनी चाहिए। दधीचि ऋषि के पास इंद्र गए। तो दधीचि ऋषि ने इंद्र को खूब फटकारा। इंद्र जो सुख सुअर को सूरडी के साथ मिलता है, कुकर को कुकरी के साथ मिलता है, वही सुख तुझे इंद्राणी के साथ मिलता है, उस सुख में क्या अंतर है? क्यों ऐसे गंदे सुखों में फंसते रहते हो? इंद्र का मुंह छोटा हो गया। इंद्र के मन में आया कि मुझे भी फटकारने वाला कोई है, तो इसका मतलब दधीचि ऋषि परम वैराग्यवान है, ख्याल करना चाहिए। वैराग्य की अवस्था का आनंद कोई बता नहीं सकता है। जब तक विषय प्यारे लगते हैं तब तक तो कल्याण की बात पैदा ही नहीं होगी, चलने की बात तो दूर रही। सब कुछ गुण है, सब गुण है, लेकिन वैराग्य नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े वैराग्यवान पुरुषों के चरणों में बड़े बड़े राजा लोग भटकते रहते थे। वैराग्यवान पुरुषों के पास राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई क्यों न हो, आपको एक दृष्टि से देखते थे। आप स्वयं करके देखो, जब आपके अंदर वैराग्य की वृत्ति प्रबल हो तब आपका भजन साधन अपने आप तेज बढ़ेगा, और जब वैराग्य नहीं है तो इस संसार में लुढ़कते रहोगे। जब भगवान का प्रेमी वैराग्यवान होकर भगवान के प्रेम की बातें कहता है तब ऐसा लगता है मानो प्रेम रस की खूब वर्षा हो रही है। उसके एक एक वाक्य में प्रेम टपकता रहता है। उस प्रेम को आपकी वैराग्य वृत्ति अपने में खींच रही है। प्रभु के प्रेम रस का जो पान कर रहा है उस समय तो प्रभु मिले नहीं, और जब मिल जाए तो फिर कहा नहीं जाता, बेहोश हो जाता है। जिस समय प्रेम का पान करता है ठीक उसी समय भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? भगवान देखते अभी मेरे से भी ज्यादा कीमती चीज इसको मिली हुई है, मैं जाकर क्या करूंगा। हे महापुरुष, और जब वह प्रेम करने लगता है और भगवान मिल जाए तब वो बेहोश हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। ध्यान के दर्शनों से ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं प्रभु को पी रहा हूं। प्रभु से ध्यान अवस्था में जब बात होती है तब ऐसा लगता है मानो कानों के द्वारा मैं प्रभु को पी रहा हूं। जब मन में अनुराग भी बढ़ता है तो ऐसा लगता है मैं मन के द्वारा प्रभु का पान कर रहा हूं। ऐसे तो ध्यानावस्था में और मिलने की बात कही है, पर वो कहीं पूरी जा सकती नहीं। विषयों के रस में जो चलते हैं उन्हें लाखों बार धिक्कार है। श्रीमन्ना